ప్రతిమైన కింపి పత్తి కింపి హై ఫల్ఫల్ కింపి హై శఖై కింపి హై హా కింపి తో హై పర్ వాస్తవ కీమత్ కిసకీ హై జో ఊపర్ నహీ ఛుపా హుతా హై జో జారీ హై వో జ్యాదా కీమతీ హై దిఖాయి నహీ పడతీ ఐసా తో హమారే భీతర్ భీ హై జో బాహర్ హమే దిఖాయి పడ్ జాతా హై హమ్ ఉస్కీ కీమత్ ఆంకతే హై और उसकी कीमत आंक करके उसी से सुख और दुख दोनों निकालते हैं। जिस चीज को कीमती मान लिया हमारे पास आ गई तो सुख हुआ, जिस चीज को कीमती मानो हमारे से छीन गई तो थोड़ा सा दुख हुआ। चीजों की कीमत हमने दी, किसी भी चीज को कीमती हो या ना हो कीमत देना हमारा काम है। एक रुपये का नोट हो या 100 रुपये का नोट किसी बेटे के हाथ में रख दो, उसको क्या है, वो थोड़ा बहुत खेल है तो चिंता चिंता करेगा, किसी काम में फेंक दे उसको, वो कागज के टुकड़े से ज्यादा नहीं है। लेकिन हमने उस पर 100 रुपये कीमत आंक रखी। कभी हमने तो टुकड़े में किसी से नहीं कहा कि बहुत कीमती है तिजोरी में रखो, लेकिन हमने संभाल के रखा, हमने उसकी कीमत डाली। बनने में और पत्थर
कर दिया गया। उसके बहुत पुराने मित्र, काफी मिल गया मिलने वालों का,
कोई चल रहा है, जब कोई देख आता है तब लोगों को ख्याल आता है कि कोई चल भी रहा था। जिंदगी में कहीं याद रहता है कि कोई जीता था, मरने के बाद याद आता कि मैं जिंदगी भर जीता रहा हूं, मैं तो मिला नहीं पाया इन जिंदा आदमी से। मुर्दा को मिलने का तो लगाव कभी भी है, जिंदगी चार साल तक नहीं मिला होंगे उस आदमी से, लेकिन जिस दिन सुनते हैं कि अब मिल रहा हो उस दिन उसकी लाश से मिलने जाते हैं। कैसा वर्चित्व है, जो चेतना की तरफ व्यक्ति थी जिसे देख लेना चाहिए था उस मुद्रम पर चूकते जाते हैं, और जो शरीर जो कि सिर्फ दिखाई पड़ता है, जो चेता नहीं है जिसे टूट जाना है, फिर भी उसे नहीं देख पाते। लोग आए हैं वो पूछ रहे हैं, बहुत पुराने मित्र ने पूछा कि कहा कैसे तकलीफ तो बहुत होती होगी क्योंकि सारा शरीर टूट फूट गया था। एक दिन आए तो ऐसे नहीं कि सिवा उन दो आंखों के जहां की उसकी पत्तियां ना बनी, सारे शरीर में पत्तियां बनी थी, बड़ा गहरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मित्र ने इसका एक्सीडेंट हुआ था उसने कहा कि हां मैं हुआ सम पेन आई फील, उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती जब मैं हंसता लोगों का अद्भुत विमुद्रीकरण का अद्भुत तो घटते हैं सभी चरण की कमी घटते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती वैसे तो तकलीफ नहीं है। बड़ा अजीब सा तुम्हारा सोच है, उसने कहा मैं लिखने क्या, मैं तो यही सोचता हूं कि अगर अभी हंसू है तो शायद मेरा जिंदगी में हंसना व्यर्थ हुआ। हंसने का मतलब तो वास्तव में अभी भी है कि मैं जिसको ये सोचता था कि इसके टूट जाने से मैं टूट जाऊंगा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ लोग जब मुझसे पूछते हैं कि क्यों कैसे हो तो लिखे समय का मतलब ऐसे ही जैसा पहले था, कुछ भी नहीं टूटा, जो टूट सकता था वो टूट गया। मैं तो जानता था मैं तो ठीक हूं, यह अंतर बोध है, यह अंतर बोध की उपलब्धि है, यह एहसास किसी घटना के बाद होता है। मैं सोचता हूं कि व्यक्ति को अगर यह एहसास अपने जीवन में होने वाले निरंतर के कार्यक्रम में अचानक हो जाए तो शायद जीवन बहुत बेहतर ढंग से जिया जाए। वो बिल्कुल ठीक है, इतनी चोट होने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि जब मैं हंसते हुए सारी हंसी आती है अपने ऊपर अपने पुराने जीवन पर कि सोचता था उसके बताया बताए सोचता था कि इसके बढ़ जाने से मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन ये पूरा टूट फूट जाने के बाद भी मैं जाता तो हूं कोई पूछ बता मैं कहता हूं ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं बोलता हूं समझना है मुझे सारा कुछ है जो टूट सकता था वो टूट गया। यह अंतर्दृष्टि धर्म देता है, वो अंतर्दृष्टि अकेला धर्म नहीं देता, हमारा अपना जीवन भी देता है। अगर जीवन को हम पुराण बना लें, अगर जीवन को हम वेद बना लें, जीवन को हम गीता बना लें, हमारा जीवन भी यही सारी चीजें देता है। जो जो चीजें किताब में दिखी है वो चूंकि किताब में दिखी है इसलिए धर्म है, ऐसा नहीं है। जो जो किसी ने जिया है वो किताब में लिखा हुआ है इसलिए हम भी जी सकते हैं, क्योंकि किताब में लिखा है कि पाप नहीं करना चाहिए इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा सोच हो गया, ये तो कोई नहीं कर देगा। मैं जो हमें अपने जीवन को बनाना है कि पाप ठीक चीज नहीं है इसलिए कहता हूं कि नहीं करना है। ये अगर हमारे जीवन में आ जाए तो अपने आंखों से सीखना शुरू कर। तीन चीजें बहुत आवश्यक है, मैं सोचता हूं कोई काम भी अपने आंखों से सीखना शुरू कर दे तो जीवन विकसित होना शुरू होता है। दूसरा आदमी कर्मठ हो और तीसरा प्रकृति के निकट हो, प्राकृतिक हो। कहीं बांध के रख लीजिएगा, शायद किसी समय काम आए। मेरे पास थी, मैंने सोचा कि आपके पास भी हो, आप भी रख लीजिएगा। मैं भी कभी कभी इनका उपयोग करता हूं पर पूरी तरह इनका भी उपयोग नहीं कर पाता हूं। आप भी शुरू करिएगा, शायद ये काम आएंगे। बहुत अच्छी चीजें हैं, विकास जरूर होता है इनसे, एक अनुभव से हम सीखे। रोज हम कुछ ना कुछ नया अनुभव करते हैं, अच्छा और बुरा दोनों तरह का अनुभव होता है। अच्छे अनुभव को हम सजो के नहीं रख पाते हैं, दुख को हम बहुत अच्छे से सजो के रखते हैं। काश हम जैसे दुख को अपने अंदर सजो के रखते हैं वैसे सुख के क्षणों को भी सजो के रखें, ताकि कभी कोई विपत्ति आए तो हम उसका एहसास कर सकें। रामकृष्ण मरण के निकट थे, शारदा दुखी थी थोड़ी, जीवन भर साथ रहने वाला किसी के वियोग में थोड़ा सा दुखी तो होता है, लेकिन थोड़ा समझदार हो तो
से जीत भी लेता है, अनुभव से जीता जा सकता है, हर चीज को अनुभव से सॉल्व कर सकते हैं। तर्क तो बहुत पीछे छोड़ जाते हैं, मैं तर्क के अलावा तो आपसे कह चुका हूं, थोड़ी सी चीजें हैं जो ज्ञान बुद्धि और तर्क से पाई जाती है, लेकिन खास चीजें हैं, बहुत चीजें हैं जो श्रद्धा और अनुभव से पाई जाती है, व्यक्ति के अपने अनुभव से पाता है। शारदा को उदास देख करके रामकृष्ण ने कहा था कि अगर तुमने इस शरीर को रामकृष्ण माना हो तो ये शरीर पर टूट के गिर जाएगा, इसके गिरने के बाद जी भर कर रो लेना और खूब दुखी होना, और अगर तुमने इस शरीर को रामकृष्ण नहीं माना हो तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, रामकृष्ण मरेगा नहीं, आत्मा की तरह वो कभी मरेगा नहीं, लेकिन अगर शरीर की तरह उसको माना हो तो वो कभी टूट के गिरता है, कुछ चिंती देरी है। देखते हैं कोई ना कैसे मरता है, बड़े बड़े मर जाते हैं, छोटे छोटे कैसे मरते देखते रहते हैं, आपका पैर बड़ा सा रखा नहीं हुआ जो लोग देखा जो 15 सीटी और छोटे मोटे पे उनका तो पता नहीं लगता, वो अपनी दिल में विषादित करके पता नहीं कहीं उत्पन्न हो जाते होंगे और हम वही खड़े रह जाते हैं। ऐसी तो हम अगर अनुभव से सीखना चाहें तो देने की लागत ये टूट करके गिरती है, अगर ये निशान समय हो जाए तो बहुत सजगता आ जाए जो हमारे जीवन में। मैं सिर्फ छोटी सी बात कह के आपको पूरा नहीं कर रहा हूं कि देह अलग है आत्मा अलग है, तो बहुत लोगों को सबने सुना है और देह आदमी तो पूरी जिंदगी मेरे ख्याल से ये बात सुनता ही रहता, हमेशा सुनता है, लेकिन एहसास से होना चाहिए। हम हाथ में हाथ नहीं है किसी का बैठे हुए हम आता ना कि अलग है किसी भी दिन ये टूट करके गिर जाएगा, ये मेरा हाथ भी और ये सामने वाले का हाथ भी, ग्रास हाथ में हो और अचानक एहसास हो कि कितनी देर टिकेगा, अभी उधर से नीचे नहीं गए और बेकार हो जाना, फिर खुद बाहर लाके देखो तो ठीक नहीं बनाएगा, कुछ निशेद नहीं बनाएगा, कुछ नहीं होगा, उसके पीछे मैं इतना आकृष्ट हूं, इनमें से छूटी करके बड़ा मुश्किल से कि ये पहले कि ये पहले कि ये पहले और बड़े मुश्किल में चॉइस करके और शरीर को धारण किया और जरा सा विचार आ गया कि शाम होते नहीं होते ये उतार करके फिर नहीं लाए, खुद क्या कुछ ऐसा खा पाए जिसके बाद खाने की जरूरत ना पड़ी हो, क्या कुछ ऐसा पहन पाए जिसके बाद उतारने की जरूरत ना पड़ी हो, तने और रानी से बेहतर नहीं है कोई लिबास, तने और रानी से नहीं है बेहतर कोई लिबास, ये वो जाना है जिसका ना उल्टा होता है न सीधा, कि लिबास किसी दिन एक दिन मेरा भी हो ऐसा एहसास क्या आपको कभी नहीं होता, अगर आप अपने अंदर से जाने तो आपको यह एहसास हुए बिना नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रणाम बनाए अपनी अनुभूतियों को। मैं अपने जीवन में बहुत पहले मैं फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहा था, दीक्षा देने के मुश्किल से 6 महीने पहले की बात है, और कभी फंक्शन करना हो तो 3 दिन का फंक्शन है तो 2 टाइम फंक्शन हो रहा है तो 6 ड्रेस तो चाहिए ही चाहिए, एक ड्रेस रिपीट कैसे की जा सकती है, दोपहर के फंक्शन में दूसरी, सुबह के फंक्शन में दूसरी, अगले दिन वाले के दिन दूसरी, और दूसरी मेरा थोड़ा विशेष हो रहा होगा और दूसरे विशेष ड्रेस होने की। लेकिन एक दिन मेरे मन में आया कि बात तो मैं बहुत अच्छी करता हूं मंच पर, बहुत अच्छा सारा कुछ मैनेज करता हूं, लेकिन मैं अपने भक्तों के प्रति इतना गलती क्यों हूं, जिसके पास एक ही ड्रेस होगी वो क्या बदलता होगा, मैं देखूंगा, मैंने देखा करके देखा कि एक ही ड्रेस 3 दिन का फंक्शन हो तो नहीं करता, लेकिन मैं बहुत मिलते हैं जैसे लेकिन मुझसे ये नहीं ये भी कभी कल तुम मुझे आते नहीं थी किसी ने कितने का इसको मौका है आपको कभी देखने की, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि निकलने के बाहर तो शायद पहले नंबर लोग देखेंगे कि कौन सी ड्रेस पहन के निकले साहब, हर आदमी इसी कोशिश में है, ये हमारा अपना रोज का अनुभव है, हम इस अनुभव से सीख सकते हैं, तमाम पुराण पुराण और वेद पढ़ने की आवश्यकता है, पूरा जीवन वेद की तरह है, वह हमें निरंतर ज्ञान देता रहता है, निरंतर सुबह से शाम 24 घंटे तक हमें अपने जीवन से ज्ञान मिलता रहता है, बशर्ते कोई ज्ञान बनना लीजिएगा अपने जीवन से ज्ञान लीजिए। दूसरी चीज, इन दिनों में निरंतर प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं, वैसे तो इस जगह आ जाते हैं तो लगता है प्रकृति के बहुत निकट है, एक ये जो बाहर दिखने वाली प्रकृति है वो तो है ही, उससे भी हम दूर हो गए, और तो मजा ये है कि जितने जितने हम जंगल से दूर हुए हैं, जितने जितने हम नेचर से दूर हुए हैं, उतना उतना हमने अपने ड्राइंग रूम को नेचुरल बनाने की कोशिश की, सीमा लगाएंगे, जल प्रपात बिल्कुल ऐसे गिरता हुआ, लेकिन हम जल प्रपात के वहां देता नहीं था, हम कभी दीवार लगवा लेंगे पूरा जंगल आ जाएगा उसमें सीनरी में और फर्नीचर, लेकिन कभी हम जंगल की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें अपने घर को ही ऐसा जंगल जैसा बना लिया। मैं और बड़ी बात कह दूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, जंगल में रहने वाला कौन होता है? हम शायद वही हो रहे हैं। हम अपनी प्रकृति से हट गए, हम अपनी प्रकृति से हट गए। हमारा भी कोई एक नेचर है, हमारी भी कोई एक प्रकृति है, हमारा भी एक स्वभाव है, उससे हम हट गए। तो हम इस प्रकृति से भी हट गए, हम इतने अधिक औपचारिक हो गए, इतने प्रॉब्लम हो गए, इतना कृत्रिम जीवन जीने लगे कि कहीं कुछ भी तो नहीं है जिसे हम नेचर कर सकते। हम किसी से दो शब्द सीधे सीधे भी तो नहीं बोल पाते हैं, जरा सोच समझ के बोलना पड़ता है कि कौन से शब्दों से सामने वाला खुश होगा। हम किसी से सहज हाथ में हाथ मिला करके खड़े भी तो नहीं हो सकते। हमें तो लगता है कि इसी के साथ खड़े हों जिससे कि हमारा स्वार्थ पूरा, क्या जरूरत है और दूसरे के साथ। एक एक चीज में अगर देखें, उठने बैठने खाने पीने सारी चीजों में खा रहे हैं तो इसलिए कि चार लोग ठीक से देख सके कि मैं ठीक ठीक खाता हूं। पूरा जीवन हंस रहे हैं तो मेरे किसी का भरोसा नहीं कि भीतर भीतर शायद रो रहे हैं और बाहर से हंसना पड़ रहा है। रोने में तो कोई ठीक तो नहीं रो पा रहे हैं, भीतर कहीं कोई व्यंग की हंसी भी छुपी हुई है और हमारे आंसू भी ठीक ठीक तो नहीं आ पाते। हर जगह एक फॉर्मेलिटी, हर जगह एक कृत्रिमता। ध्यान दिया हमें कृत्रिमता में, कोशिश करिए पीड़ा का कारण यही हमें विकसित नहीं हो पाने का एक कारण है। हम नेचर की तरफ चलें, हम सहज तो हो सके, कुछ थोड़े से क्षण हमारे जीवन के हों। किसी ने लिखा हुआ है कि जिसे जीवन का विकास करना है वो कम से कम 24 घंटे में एक घंटे छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना सीखे, देखे देखे उनको, सिर्फ देखे, जस्ट सी कि कैसा वो जीते हैं, कितनी शांति से जी देते हैं, कितनी निर्मलता से जी देते हैं, कितने निर्विकार होकर जी देते हैं, कितनी सहजता और सरलता से जी देते हैं। उनसे हम सहज सरलता सीख सकते हैं, उनसे हम निर्विकार होना सीख सकते हैं, उनसे हम नेचुरल होना सीखते हैं। अब तो लोगों के बीच रहने को कृत्रिमता लगने लगती है, लेकिन बच्चों के बीच रहिएगा बहुत सहज हो जाती है। मैं तो देखता हूं आपके साथ बात करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बड़ा समझ के बोलना पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से कोई समझ के नहीं बोलना पड़ता है। मैं जैसा बोलूंगा वो उसको समझ जाते, मेरी भाषा समझ जाते, क्योंकि क्या कहा गया है कीमत ये नहीं है, कैसे कहा गया है ये ज्यादा कीमत। कहने को तो कोई बहुत बड़ी बात कह सकता है, लेकिन कैसे कहा गया है, नेचुरली कहा गया है या आर्टिफिशियली कहा गया है, आदमी उतना जानता है। धोखा देने वाला धोखा दे रहा है इस अदा से कि वो जो दे रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाने वाला बुद्धू है, धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है इस अदा से कि वो जो खा रहा है वो धोखा नहीं है। ऐसी तो चल रहा है हमारा जीवन, धोखा धोखा होने की वजह से खोल रहा है, दोनों के दोनों का काम चल रहा है। सब एकदम अननेचुरल हो गया, कहीं भी कोई सहजता थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिखाई पड़ती है तो मन करता है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है। जहां जितनी सहजता दिखाई पड़ती है उतनी अच्छा लगता है, उतने जुड़ने का मन होता है। जहां थोड़ा आर्टिफिशियल होता है तो आंख तो पकड़ लेती है कि ये सब फॉर्मेलिटी की जा रही है, अपना स्वार्थ पूरा किया जा रहा है। कोशिश करिए आप जब इस चीज को समझते हैं तो थोड़ी देर निस्वार्थ भी तो होइएगा, थोड़े से अनौपचारिक भी तो हुआ करिएगा। बहुत जीरिया औपचारिक जीवन कुछ क्षण तो अपने जीवन के। दूसरी बात जो मुझे कहना थी वो ये है, तीसरी बात मुझे कहनी कि थोड़ा सा कर्मठ होने की कोशिश, और कर्मठता तो हमारे अंदर है, लेकिन दो तरह की कर्मठता है। एक तो कर्मठ हम इस मामले में हुए हैं कि सुबह से शाम तक हमारे पास सैकड़ों काम है और हम उन सबको निपटाते रहते हैं। सुबह से शाम तक हम ढेर सारे काम करते हैं तो लगता है कि हम कर्मठ हैं, लेकिन ये कर्मठता तो मेरे ख्याल से सबके पास है। एक पत्थर तोड़ने वाला भी सुबह 6 बजे से दो रोटी बांध के निकल जाता है, पत्थर तोड़ता रहता है, वो भी कर्मठ मालूम पड़ रहा है। एक गद्दी पर बैठा हुआ आदमी भी कर्मठ मालूम पड़ता है, और एक ऑफिस में चेयरमैन भी कर्मठ मालूम पड़ता है कि वो अपना काम बखूबी कर रहा है। लेकिन इस कर्मठता की बात नहीं कर, अपने जीवन के विकास के लिए भी तो हमें कर्मठ होना चाहिए, अपने जीवन के आंतरिक विकास के लिए वो कर्मठता भी अवश्य, और इन दिनों वो कर्मठता थोड़ी सी कम है। और उसका कारण यही है, दो चीजें पुरानी वाली अगर अपने पास हो, पुरानी मतलब जो अभी हम सुन चुके हैं, अनुभव अपने पास हो और निश्चिंती हो, तो फिर तो
आदमी आंतरिक कर्मठता भी प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति अपने आंतरिक जगत में भी कुछ ना कुछ घटित करे बिना नहीं रहेगा। जब मैं देखता हूं कि मुझे सुबह से शाम तक इतना काम पूरा कर लेना है, तो मैं सुबह से शाम तक ये नहीं कर सकता हूं कि आज मुझे दिन भर मिनिमाइजेशन करना है हिंसा का, मिनिमाइजेशन करना है झूठ का, चोरी भी कम से कम करनी है, आज तो अपने स्वभाव के विरुद्ध जाना नहीं है, आज तो संग्रह नहीं करना है। तो हमको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, पापों को मिनिमाइज नहीं कर सकते। जब हम दिन भर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, तय करते हैं कि अधिकतर इतना काम हम करेंगे, तो हमारे उस डेली रूटीन में एक ऐसा भी काम नहीं होना चाहिए कि हम अपने आत्मिक विकास के लिए आज इतना कुछ करेंगे, होना तो चाहिए था। करिएगा, प्लान करिएगा, इसका भी प्लान करिए। जब आप सुबह बैठते हैं और दिन भर का शेड्यूल तय करते हैं कि आज दिन भर में ये करेंगे, तो आप उसी में ये भी देखिएगा कि आज मेरे 10 मिनट अपने आत्म विकास के लिए भी मुझे देना है। वो कैसे संभव है ये आप अपने लिए स्वयं तय करेंगे। कोई व्यक्ति दूसरे के आत्म विकास के लिए कुछ इशारा दे सकता है, लेकिन तय तो उसे ही करना पड़ेगा कि कैसे मैं उसका, अगर वो कठिन है तो उसे अपने आत्म विकास के लिए सड़क बनाए। अगर वो कहीं बहुत अधिक व्यस्त है तो उसे अपने जीवन के बहुमूल क्षणों में से कुछ थोड़ा सा अपने लिए स्पेस ही निकालना चाहिए। स्पेस कह रहा हूं थोड़ा सा अवकाश निकालना चाहिए। बहुत अधिक व्यस्तता भी अच्छी नहीं, बहुत अधिक अवकाश भी अच्छा नहीं, बहुत अधिक सरलता भी अच्छी नहीं, बहुत अधिक कठोरता भी अच्छी नहीं। एक बैलेंस, एक बहुत संतुलित जीवन, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। 24 घंटे में से अगर आप 3.5 घंटे भी बाहर की कर्मठता के लिए देते हैं और सिर्फ आधे घंटे अपने आंतरिक प्रोडक्ट को भी देखने के लिए देते हैं, वह भी कुछ काम करने के लिए देते हैं, तो मैं समझता हूं वह आधा घंटा पर्याप्त है। आपके उन 3.5 घंटे पर भारी पड़ेगा वो आधा घंटे। अगर आपने पूरे मन से अपने आत्म विकास के लिए भगवान के सम्मुख आकर के पूजा करी है, वो जो आत्म विकास की प्रक्रिया है, प्रक्षाण आत्म विकास की प्रक्रिया है, स्वाध्याय आत्म विकास की प्रक्रिया है, किसी सम्यक दृष्टि और रत्न प्रेय धारण व्यक्ति विपराजी के पास बैठ जाना अपने आत्म विकास की प्रक्रिया में शामिल है, वो भी एक कर्मठता है। क्या इस कर्मठता को आप नहीं प्राप्त करना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा सोचना है कि इसको भी आपको प्राप्त करना चाहिए। और इन सबका अगर कोई प्राप्ति का उपाय है इन सबका, तो बहुत छोटा सा प्राप्ति का उपाय है कि व्यक्ति सरल हो जाए। मेरे ख्याल से तो सारी चीजें बहुत अनायास घटित हो जाती है, एकदम अनायास घटित होती है। जो हम कोशिश कर करके भी नहीं पा पाते हैं, हम कर्मठ नहीं हो पाते, हम नेचुरल नहीं हो पाते हैं, हम अपने अनुभव को नहीं सीख पाते हैं, आखिर वजह क्या? हम कहीं ना कहीं भीतर कठोर हो गए। हमारी जमीन जैसे कि पानी ग्रहण न कर पाए तो गिर नहीं होती, पर उसको बीज बड़े गए तो उगता नहीं है। ऐसे तो हमारे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। कितने बीज डाले गए, आपने अपने हाथ से डाले होंगे, किसी ने आकर के आपके बीच में डाले होंगे, दोनों स्थितियां बनी होंगी, लेकिन मुश्किल कहां हुई है कि वो बीज फलित क्यों नहीं? इतनी अच्छी से अच्छी बात हमारे पास होने के बाद भी वो हमारे जीवन में वृक्ष की तरह फैल क्यों नहीं पाती? कहीं ना कहीं कोने में रह जाती है वो बात। जो हम इतनी अच्छी बात सुन लेते हैं वो एक कोने में रखी रह जाती है, हम उसको यूज ही नहीं कर पाते। वो पूरे जबकि उसको पानी मिलना चाहिए, तो खाद मिलना चाहिए, तो नहीं मिलनी चाहिए, और पूरे के पूरे जीवन में विकसित हो जानी चाहिए। वो वृक्ष का रूप धारण कर लेना था उस बीज को। एक अगर श्रद्धा का बीज, एक अगर ज्ञान का बीज, एक अगर आचरण का बीज हमारे भीतर गिरा है तो उसको विकसित हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ इसका मतलब है कि कहीं कोई कठोरता हमारे भीतर है। हमारी जमीन बहुत वर्षों से बहुत जिंदगी के संस्कारों की वजह से शायद कठोर हो गई है। हमें पहली कोशिश तो उसको नरम करने की करनी चाहिए, उसको भिगो देना चाहिए। और बीजे भी कैसे, बीजे भी ऐसे क्यों संवेदनशील हो, हमारे अंदर सरलता, हमारे अंदर से हम चीजों को उनकी वास्तविकता में देखें। हम हर चीज के जो वैसे अर्थ वास्तव में हो सकते हैं वो लें, तो शायद हमारा मन बीज बिना नहीं। श्रद्धा पूरे जीवन को, मैं तो यही कहूंगा कि आपने मन बनना है। एक मां थी, उसके एक ही बेटा था। बेटे के मां के सिवाय कोई नहीं था और मां के बेटे के सिवाय कोई नहीं था। बेटा तो शायद मां के सिवाय किसी और को जानता भी नहीं था, मां जरूर थोड़ी बड़ी हो गई थी तो बेटे के सिवाय और भी चीजों को जानती थी, भगवान को भी जानती थी। उसके अपने पहले जो फील्ड भी थी उसको भी जानती थी, पर बेटा तो बिल्कुल नहीं जानता था। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जहां कहीं भी दिखाई पड़ती थी तो सिर्फ माँ दिखाई पड़ती थी, उसके अलावा उसने और किसी चीज को देखा नहीं था, जाना नहीं था, समझे नहीं था। माँ तो सिर्फ प्रतीक है, काश हम भी ऐसा ही देख पाते, लेकिन उसके अलावा सब देख लेते हैं, वो तो नहीं दिख पाता है जो कि हमें देख लेना चाहिए। एकदम बेटा बड़ा हो गया, माँ को चिंता हुई। बेटा जब तक छोटा रहता है तब तक चिंता रहती है कि कब बड़ा होगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो चिंता रहती है कि कब और बहुत बड़ा हो जाएगा, जब और बहुत बड़ा हो जाता तो कब आदमी बन जाएगा, बड़ा सारा आदमी बन जाएगा, इसकी चिंता रहती। और जब फिर आदमी बन जाता है तब ना अपने दायित्व से भले मुक्त हो जाए, लेकिन बेटे का दायित्व तो वहां से शुरू हो जाता है। वो पहले हुआ करता था, अब पता नहीं ऐसा होता है कि मैं नहीं जाना। मैंने बहुत वर्षों से ये सब देखना बंद कर दिया है, क्योंकि देखने को हमें क्या रहेगा देखने के लिए। सारे संबंधों को जी करके देखा है और फिर आपके संबंधों के बीच भी देखता हूं कि सिर्फ संबंधों में एक औपचारिकता हो गई, आत्मीयता खत्म हो गई, संवेदनशीलता खत्म हो गई, स्वार्थ निरंतर अपनी घुसपैठ लगाए हुए और घुसता पड़े। अच्छे से अच्छे संबंध, ईमानदारी के संबंध, बेमानी के संबंधों में तो आज भी ईमानदारी है, लेकिन ईमानदारी के संबंध में जिस तरह से बेईमानी घुस गई वो बहुत पीड़ादायक। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटे को सिवा आगे पीछे ऊपर नीचे माँ के सिवा कोई नहीं था। और मां जब बेटा बड़ा हुआ तो सोचा कि पढ़ लिख ले, अच्छा पढ़ा लिखा हो जाए, बड़ा हो जाए तो मां को शांति मिलेगी इससे। देखो तो दूसरे के बड़ा हो जाने से किसी को शांति मिलती है, आप देखो तो दूसरे के बड़ा हो जाने से अशांति रहती। एक समय हुआ करता था कि कोई ऊंचाइयां छुए और हम भीतर भीतर खुश होते रहते हुआ कितनी ऊंचाई पहुंच गए, रास्ते में भीतर भीतर मौका ताकते रहते हैं कि कब मौका आए और सीढ़ी के नीचे गिरा जिससे चढ़ा है वो। तो मैं निरंतर प्रयास में थी कि कब ये पढ़ लिख जाएगा। एक दिन जब पढ़ने लिखने लायक बड़ा हो गया, मैंने कहा कि बेटे स्कूल जाना है। अगर बेटे से तो नहीं कहा कि स्कूल जाना है वह मैं इनकार न कर दे तो पहले तय करके आ गए। स्कूल पास में नहीं था, स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर था और उसकी सुविधा भी नहीं थी कि कोई बस बस जाती हो कि उसमें ना जाए और उसको बिठा दे और फिर दावा करे कि जाओ शाम को फिर आएंगे तो फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत पुराने जमाने की बात है, आउट ऑफ डेट कह दीजिएगा तो भी अच्छा है, अब तक अपनी डेट हो रहे हैं इसलिए हर चीज आउट ऑफ डेट लगती है, आउट ऑफ डेट कह लीजिएगा। पर मुझे तो कहानी सुनानी है तो कोई साधन नहीं था, तो सुविधा नहीं थी, जंगल था, जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। पहले तो मैं बड़ी, अरे बेटे से कुछ नहीं बना, वो बड़ी पहले जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा, पर वैसे कैसे करके मन बनाया कि भेज दूंगी। अब पढ़ना है बेटे को तो भेज दूंगी, पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है भेजना, किसी के विकास के लिए अपनी आकांक्षाओं को बहुत समय लेना पड़ता है, तो व्यक्ति सरल हो पाता है। अपनी आकांक्षाओं को पूरी करवाने के लिए दूसरे के विकास को रोक देना ये तो बहुत आसान की चीज है, ये तो कोई भी कर लेता है, लेकिन किसी के विकास के लिए अपनी आकांक्षाओं को समेट देना, मैंने अपने मन को समेट लिया, बेटे को भेजा ही दो और दूसरे दिन सुबह, इससे पहले कि सुबह को उसका काम था, बेटे के सिवा किसी और को वो जानती थी ना, तो सिर्फ एक को जानती थी, एक को जानती, वो उसका ईश्वर था, वो उसका भगवान था। तो जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि सोचती हूं बड़ा हो गया है कुछ पढ़ लिख जाता, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करना, अकेले भेजूंगी, अब जिम्मेदारी मेरी नहीं है तुम्हारी है, सो संभालते। बहुत कठिन है ऐसा कहता हूं, किसकी जिम्मेदार सौंपा नहीं, जिसकी एग्जिस्टेंस में मानते हैं उसके जिम्मे सौंप दिया, जो ध्यान नहीं करता उसको जिम्मा सौंप दिया, कैसे रखता है बड़ा जी करता है। पर यह श्रद्धा का जगत ऐसा ही है, जो दिखाई नहीं पड़ता उसी को जिम्मा अपने को सौंप देते क्योंकि वो है। और दूसरे दिन सुबह जल्दी से तैयार होने को कह के बेटे को सुला दिया, सुबह से जल्दी से जगा दिया, उठो तो जाना है सुबह से। और बेटे के मन में भी कोई संदेह नहीं था, बेटे को तो मालूम भी नहीं था कि किस रास्ते से जाना है और कौन से जंगल में से जाना है और कहां स्कूल जाना है। बस मां कहती है तो उसको एहसास था कि मां तो साथ में जाएगी, लेकिन पहले दिन से मां ने सोचा कि साथ में चली जाऊंगी तो इधर सारे काम कौन संभालेगा, कौन है करने वाला, पहले दिन से आदत डालो कि अकेले चला जाओ। तो समझा बुझा करके कि जाओ जाना है पब्लिक लोगे और चले जाओ, मैं तो वहां रहूंगी हमेशा, मैं चले जाओ, तुम बनना नहीं बिल्कुल पास में स्कूल, समझा कि गुरु जी से बोल दिया है तुम पहुंच जाओगे आसानी। अब जिसके अकेली मां हो वो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है उस पर, जिसके कोई और भी हो तो किसी और से प्रश्न चिन्ह भी लगा ले, और यही तो हम करते हैं कि इस पर प्रश्न नहीं लगा लिया कोई और मिलेगा, फिर कम से कम उसको प्रश्न लगा लेंगे कोई और मिलेगा उसको प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिस्सा पत्र काम नहीं करते हैं, क्या करोगे तो जिसका और क्यों है उस पर प्रश्न क्यों लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता, वो नहीं है उस पर विश्वास ही किया जा सकता है, वो कहते हैं तो ठीक कहते हैं। और चला गया बेटा, लेकिन जंगल का रास्ता था, बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, मां को याद करता है, शिक्षक को तो जानता नहीं था, मां को याद करता है जैसे कैसे करके स्कूल पहुंच गया, वापस भी शाम होते होते वापस लौटा तो और ज्यादा डर लगा, जहां का कोई पत्ता गिरता था तो कांप जाता था मन, 5 साल का तो था ही, वापस डर से डर से घर आया तो मां तो खड़ी हुई थी दरवाजे पर, तो सीधा पहले आकर के यही कहा कि अब क्या मेरे को भेजना मत, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे डर लगता बीच में घना जंगल, मुझे नहीं जाऊंगा मैं तेरे पास ही रहूं। अब मां कहे तो क्या कहे, क्या समझाए, अच्छा हाँ ठीक है मत जाना, अभी तो तू आया है थक गया कुछ खा पी ले और खिला पिला करके और खिला दिया, और अब कौन था जिससे की कहे तो जाकर के दीवार पर जिसको ईश्वर माना था उसके सामने हाथ जोड़ के कहा कि जाने के लिए माना करता है, अब नहीं जाएगा तो आज यहां तक नहीं बनता, कुछ उपाय करना समझाना उसको, मैं आपको तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है कि जैसा उपाय करोगे मैं सब मंजूर है, कल की सुबह उसको कोई उपाय बता देना, मुझे कोई उपाय बता देना। और जब कोई इतनी श्रद्धा से भर करके कहीं हाथ जोड़े तो ऐसा नहीं है कि कोई उपाय ना मिले, और सुबह मां जागी तो पता नहीं मां के मन में क्या आया, जल्दी से जगाओ तो उठो, तो स्कूल जाना है बेटे उठो, बेटे ने तो कहा कि मैंने कल कहा था नानी तुम्हें जाना था, उसने कहा नहीं मैं इंतजाम करती है, अच्छा तो तू चला गई थी मेरे साथ, हाँ तो तू चला फिर मैं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तो मुझे नहीं थी, वो जो जंगल पड़ता है सस्ते में वहां पर तेरा भैया रहता है, वहां पर अरे मेरे भैया नहीं है, हाँ तुम्हारा भैया भी, तो तुम जल्दी जल्दी तैयार होता हूँ, और वो बेटा बहुत जल्दी तैयार हो गया, और उसने कहा कि ठीक है मां मेरा भैया तुम्हें अभी तक नहीं आता, तुम्हारा भैया नहीं जंगल में रहता, मैं वो घर क्यों नहीं आता, तो मैं आता हूँ वहीं रहता है, अच्छा ठीक तुम वहीं रहता तो कोई बात नहीं, अब तक प्रश्न करो क्या तर्क करोगी, क्यों नहीं आता, जहां श्रद्धा होती है वहां तर्क उठते ही, बेटे ने मान लिया कि मां कहती है कि भैया जंगल में रहता है तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, मां ठीक ही कहते हैं, मां झूठ थोड़ी ना होती है। और बड़े उत्साह के साथ चलना शुरू किया, 10 कदम आगे बढ़ा, अचानक याद आया कि अगर भैया नहीं मिला रखते हैं तो कम से कम नाम तो पूछते हैं रखते हैं, नाम कहने का आवाज नहीं है तो मैं जाऊंगा उसको जाना होता है, काम नहीं होगा वो इतने बैठा हुआ काम कर रहा हूं तो आवाज तो बना पड़ेगा, फौरन लौट कर जाया, उसने कहा कि अम्मा तुम्हें नाम तो बताऊंगे, अरे हाँ ये तो मैं भूल गई थी, अब मैं क्या नाम बता दे, कोई भैया हो तब मैं नाम बता दे, लेकिन जब उपाय मिलता है तो अधूरा नहीं मिलता पूरा ही मिलता है, और अचानक मां के मुंह से निकला कि जा जंगल में डर लगे तो बुला लेना अरंत भैया, यही है तेरा अरंत भैया, वही आवाज दे देना कि अरंत भैया आओ, वो आ जाएंगे। और बेटा चला हंसी खुशी चला, जंगल में पहुंचा तो जंगल तो जंगल है, कितने ढाड़स बनाओ पर डर तो लगता, तो फिर डर लगा, अब तो डर लगा तो थोड़ा कम लगा, क्योंकि तो मेरा भैया है यहां पर, अभी बेटा ही लगा और उसने आवाज की, लेकिन वहां कोई हो तब ना आवाज बोल करके आ गई वापस, फिर डर आया, फिर आज से आवाज दी, कितनी जोर से आवाज दे कोई सुनता ही नहीं, घबरा करके रोना शुरू कर दिया, अरे भैया मैं होती है तो हो रहा बंगल में रात को नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है अंत भैया तुम आओ। मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने सब कहा है मेरे से कि तुम यहां हो। बहुत बड़ी चीज है और कहते हैं कि कोई सामने तो नहीं आया पर आवाज आई कि हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ चलो चलता। और देखो तो ऐसा फील हुआ ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसका हम प्रयोग हुआ तो उससे बात करता चला गया और सारे रात से बात करते हुए वे स्कूल पहुंच गए और फिर से रोज का क्रम हो गया। और बड़े उत्साह के साथ कि रास्ते में जाऊंगा अरुण भैया मिल जाएंगे उनसे बात करूंगा स्कूल पहुंच जाऊंगा। माने तो जब ये सब सुना तो अपना कमरा बंद करके हर जोर के यही कहा था कि जांच रखें तो बेटा कम से कम पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा। मैंने तो ऐसा उपाय कर दिया था लेकिन तुमने तो पक्का उपाय कर दिया मेरे तो कहीं कोई। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि स्कूल में गुरु जी ने कहा कि सब बच्चे कल अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे और इतना कुछ लेकर के आएंगे कि चार और लोगों को हो सके कल अपन लोग शांति करेंगे। ये घर पहुंचा बड़ी हंसी खुशी पहुंचा और मां से कहा कि मां कल सब लोग कुछ ना कुछ लेकर के स्कूल जाएंगे और अपना कुछ लेकर के जाएंगे कि चार लोग आठ लोग को और दिया जा सके। अरे मां क्या कहे अच्छा बेटा देखिए जिसके पास अपने खाने के लिए थोड़ा सा और अपने बेटे के खाने के लिए थोड़ा सा हो वो आप लोगों से लाख कहीं से दे। लेकिन जिसके पास भावनाएं हैं जिसके पास श्रद्धा है उसके पास आप क्या उसके पास तो पूरी दुनिया को देने के लायक है जिसके पास देने की भाव है। रात के अंधेरे में अब की बार फिर मैंने एक बार हाथ जोड़े ऐसा रात में बार हाथ जोड़े कि कल ये कहता है कि कुछ लोग आके जाऊंगा है कौन मेरे पास तुम्हारे सिवाय जो उसको दे अपने घर जो सपना करना है तो सुनो तुम्हें बता देना कि क्या करना है। और सुनो जब बेटे ने कहा कि लाओ तुम्हें क्या बेटा है यहां सबके बीच में मेरे भी तो रहना पड़ेगा बस बेटे की लाइफ रहना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा था इसकी तो नहीं था मैंने कहा कि तुम ऐसा करो सबके घर घर मिले रहे ऐसी बात है वो ले वो लोगों से वो लेते चलो अपना रात भैया बोली रात के लगे पर अब आपके कहने भैया आते तो रात भैया आ गए कौन था वहां कोई नहीं था श्रद्धा थी जो सबको बुला देती भगवान को बुला देती समय है कहा वो अपने बुला दे दिया। लेकिन कहा कि मैं आपको कहते हैं कि रात भैया गए और आप पार्टी में जाना है तो वो रात भैया क्या देते कहानी में ऐसा लिखा है यहां पता नहीं किसके साथ क्या भी किया जाएगा लेकिन कहानी में लिखा है कि आवाज आई कि एक दाना बना के रख के पेड़ के नीचे और एक दाना पेड़ के नीचे बना के रखा तो वो दाना भर गया दूध से भर गया लेगा सबको ले देना इतना था मिलियन था उस बेटे में तो इतना था डरेगा सबको देगा और वो दाना के सामने रख गए उसके पहुंच गया कहा गुरु जी के सामने गुरु जी हम भी दूध लेकर के आए गुरु जी के आंसर आग हो गए इतना का दूध लेकर के आए हैं मैं क्या कहा था कि दस लोगों की लाइफ लेकर के आए और हम इस गलियों में से इतना ही दिया है अभी क्या कहें इसके कैसे कहें हम एक पर फट करके खड़ा हो ऐसे तो हमारे साथ होता है जिसके पास बहुत है जो आगे है जिसके पास कुछ नहीं है तो बिना पार दिया आप भी यही रहता है पहले भी यही दुआ करता है एक पर खड़ा हो गया तो हर कोई कुछ नहीं आया गरीब था और बुखार के पैर में खड़ा कर दिया तो क्या करे मैंने कहा था कि अरुण भैया से मिला हुआ नहीं पैरों में ले दिया था और उसको क्या रखता है कुछ छोटा है एक पर खड़ा हो गया पार्टी होने लगी कोई मुझसे नहीं सीखा मैं वहां बहुत दुखी था और दुखी होने से अपने गांव के लिए था पर एक बात है भाई कहीं भगवान कहा कि बस सबके लिए हो जाएगा
अच्छी हो गए हैं, इनसे ही अच्छे रहे, आज में आज से और ज्यादा है। अब बता कि अपना साथ सकता है कोई बात स्पेशल रहे उस बेटे में, तो फिर से हाथ फेर रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, बता के कहाँ से लाया, किसने दिया था, जिसको गिरफ्तार दिया था उसके उसके प्रेम से पूछा जाए तो गदगद हो गया है,
Oh,